आज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम श्री श्री गौर नित्याय श्री श्री जगन्नाथ वल्लभ सुभद्रा महारानी की उपस्थित भक्त वृंद की श्री गौर किशोरदास बाबाजी तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की ताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विनाखानितांस्त। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य भूनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपाद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कक्षा के सुबह के प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है श्री गौर किशोरदास बाबा जी का तिरोभाव तिथि है, तो प्रमुख रूप से उनके बारे में चर्चा करेंगे। और थोड़ा समय मिलेगा तो आज की एकादशी और साथ में भीष्म पंचक। तो सबसे पहले तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए गौर किशोरदास बाबा जी का प्रणाम मंत्र। ओम नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। तो गौर किशोरदास बाबा जी जैसा कि हमारी परंपरा के एक महान आचार्य और गुरु हैं, तो गौर किशोरदास जी बाबा जी का जो जीवन रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से कोई सेवा स्वीकार नहीं किया, कभी भी किसी भी तरह की सेवा स्वीकार नहीं करते थे किसी से भी। और खास करके सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी ऐसी विरक्ति थी कि आपने सुना भी होगा, हम कुछ पास्ट टाइम्स आगे मौका मिलेगा तो चर्चा भी करेंगे। तो इतना ज़्यादा वैराग्य था उनको सांसारिक वस्तुओं से, या उनकी विरक्ति थी कि किसी भी तरह के सांसारिक वस्तुओं में से वो बहुत दूर ही रहते थे। इवन अपने कुछ जरूरत की के वस्तुओं के लिए भी वो किसी तरह से किसी पर आश्रित नहीं थे और ना किसी से किसी तरह की अपेक्षाएँ रखते थे। और कहा जाता है कि गौर किशोरदास बाबा जी रूप और रघुनाथ दोनों के जो वैराग्य था उनके मूर्ति थे, कि रूप रघुनाथ रूप गोस्वामी में और रघुनाथ दास गोस्वामी में जो वैराग्य था उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो गौर किशोरदास बाबा जी में देखने को मिलता है। तो इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में भी वैराग्य की मूर्ति कहा जाता है उनको, एम्बॉडीमेंट ऑफ रिनन्सिएशन। गौर किशोरदास बाबा जी 1838 में अंग्रेज एडी के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, बग्यान गांव जो कि पद्मा नदी के किनारे फरीदपुर जिला, फरीदपुर बांग्लादेश में प्रकट, अब बांग्लादेश में वो जगह है और फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये पद्मा नदी के किनारे एक गांव था बग्यान, वहां पर प्रकट हुए। और ये पद्मा नदी ही गंगा नदी है, गंगा नदी सॉरी पद्मा नदी है, जो गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर के पद्मा बन जाती है, जो भारत से गंगा नदी निकलती हैं तो भारत में गंगा नदी का जो यात्रा है वो 2500 किलोमीटर की है, और उस तरफ जैसे फरक्का डैम बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर एक डैम है, वहाँ से एक जो बड़ी धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है गंगा की, और जो छोटी धारा है वो बंगाल की तरफ मुड़ती है। तो जो बड़ी धारा है वो गंगा ही पद्मा बन के बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये गंगा नदी के किनारे अर्थात पद्मा नदी के किनारे जो है वो उनका एक गांव था, उस गांव में ये जन्म थे, बहुत अमीर घराने में जन्म हुआ था गौर किशोरदास बाबा जी का, और एक बहुत बड़े बिजनेस क्लास व्यापारी घराने में जन्म हुआ था। और ये व्यापारी घराना किस चीज़ का था, ये अनाज का व्यापार करते थे ये लोग, इनके इनके पिताजी और जो हैं वो अनाज का व्यापार करते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी का जो विवाह है बहुत बहुत अर्ली एज में कर दिया गया था, इसीलिए वो 29 साल तक जो है, जब उनकी एज 29 थी तब तक वो पारिवारिक जीवन में रहे। और जब गौर किशोरदास बाबा जी का वैसे जो पहले का नाम था वो बंसीदास था, इसको बंसीदास बाबा जी मत समझिएगा, वो दूसरे हैं, ये इनका एक्चुअल नाम बंसीदास था। जो बंसीदास जो हैं आगे बढ़ के जो जब दीक्षा के बाद गौर किशोरदास बाबा जी बने, तो ये बंसीदास जी शुरू बचपन से ही इसी तरह के थे, लेकिन पारिवारिक जीवन में थे तो पिता के कहने से अन्न का व्यापार भी करते थे, मतलब अपना बिजनेस भी संभालते थे। और जब 29 वर्ष के हुए तो पत्नी का देहांत हो गया, और जब पत्नी का देहांत हुआ तो उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्हें इस बात का भय था कि उनके पिताजी जो हैं वो दोबारा से उनको विवाह बंधन के लिए वो करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि इससे पहले कि कोई चर्चा होती और कुछ होता, उन्होंने चुपचाप जो है एक दिन वो घर छोड़ दिया। और इस तरह से जो है वो सीधे वहां से वृंदावन पहुंच गए। उस समय वृंदावन पहुंचना बांग्लादेश से, आप इसको आसान मत, हम बोलना जो है कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड है, लेकिन बांग्लादेश से वृंदावन पहुंचना इतना आसान नहीं था। आप उन्होंने कैसे तय किया होगा है ना, तो बहुत कठिन यात्रा थी, तो उन्होंने बहुत कठिनता से वृंदावन जो है वो वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जा करके उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी की शरण ली और वहाँ उनसे मिले। और जगन्नाथ बाबा जी के निर्देश पर उन्होंने भागवत दास बाबा जी से दीक्षा ली। भागवत दास बाबा जी जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य थे, और तो उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी ने भागवत दास बाबा जी से दीक्षा लिया। तो दीक्षा के समय उनको कंठी की माला, बीड्स, एक टोकरी और एक कैप दिया बाबा जी ने, जो भागवत दास बाबा जी ने एक कैप दिया जो कि क्या बोलते हैं जो शेर के स्किन का बना हुआ था, वो कैप जो है उनको दिया, और एक टोकरी दी जिसमें वो अपनी वस्तुएं रखेंगे, मान लीजिए अब जप से संबंधित या आध्यात्मिक जो वस्तुएं हैं उसके लिए एक टोकरी था। तो ये और गौर किशोरदास बाबा जी ने जब भक्ति सिद्धांत महाराज को इनिशिएट किया तब उन्होंने यही सेम चीजें भक्ति सिद्धांत महाराज को दी, वही टोपी दी, वही टोकरी दी, और वही सारी चीजें उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को दिया। पता नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट क्या पता उस समय की परंपरा रही हो या जैसा भी था, तो वो टोकरी और उस तरह का। तो हालांकि वो जो है बाबा जी उसके रहने के दीक्षा लेने के बाद, इन्होंने बाबा जी दीक्षा लिया जब उन्होंने भगवत दास बाबा जी से, तो ब्रज के अलग अलग वनों में अलग अलग जा करके जो है वो कभी मधुकरी कर लेते थे तो कभी मिल जाता था, तो मैक्सिमम 7 हाउसेज में जाते थे मैक्सिमम। ये उसमें अगर कुछ मिल जाता था तो उसको ले लेते थे, और कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ नहीं मिलता था। तो गौरकिशोरदास बाबा जी यमुना की मिट्टी जो है वो निकाल करके प्राप्त करते थे, या कई बार राधा कुंड की मिट्टी जो है, अगर राधा कुंड के आसपास होते थे तो राधा कुंड की मिट्टी निकाल करके जो है वो उसको एज ए प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। और इसी से कई कई दिन तक ऐसी वो चलता रहता था, क्योंकि कई बार ऐसे मधुकरी करने में उनको कई बार कुछ प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि गए और बोला, आवाज़ दिया और नहीं कोई निकला, या कोई देर हो गई या कुछ भी हुआ, तो वो आगे बढ़ जाते थे। और नियम था कि केवल 7, और ये सन्यासी का नियम भी है, वो 7 घर में ही जाता है मैक्सिमम 7 हाउसेज। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलता, इसका मतलब ये समझा जाता है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप कुछ प्राप्त करो। तो फिर जो है ऐसा नहीं कि लगातार 70 घरों में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो ऐसा नहीं था कुछ भी, केवल 7 घरों में जाना है, और वहाँ से जो कुछ भी प्राप्त हो गया, अगर पहले घर में प्राप्त हो गया तो वापस आ जाएंगे, पहले में नहीं मिला दूसरे में प्राप्त हो गया तो वहाँ से वापस आ जाएंगे, मतलब जहाँ कहीं प्राप्त हो गया वहीं से वापस आ जाएंगे, और जो भी मिला इकट्ठा करना नहीं, जो भी मिल गया वो ले करके फिर वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है उनके उनका जो आश्चर्य वैराग्य था बड़ा आश्चर्यजनक था, कभी किसी को बताते नहीं थे कि मुझे आज मधुकरी नहीं मिली या मुझे कुछ मिला नहीं, तो वो जो कुछ भी मिलता था उसको भगवान की कृपा समझते थे, और हर ब्रजवासी को बहुत विनम्रता से प्रणाम कर करते थे, जो कुछ भी मिलता, खास करके कोई बुजुर्ग मिले, कोई इस तरह से मिले तो बहुत प्रणाम करते थे। उनको लगता था ये सब जो हैं, ये भगवान राधा कृष्ण के जो हैं, ये एक्चुअल में ये सब राधा कृष्ण के एसोसिएट हैं, प्रिय व्यक्ति हैं, इसीलिए उनके प्रति बहुत विनम्र रहते थे। तो कई बार उनके पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तो शमशान के पास जाते थे, और जो कपड़ा कोई फेंक जाता था वहाँ पर, तो उस कपड़े को धो करके फिर उस कपड़े को वो पहनते थे। यहाँ तक कि कोई वस्त्र पीने के लिए अगर कोई मटका या कोई लोटा या कुछ इस तरह की वस्तु चाहिए होती थी, वो इसी तरह से कहीं से ऐसे डिस्कार्डेड जगह ढूंढते थे जहाँ लोग ऐसे फेंक देते थे, और वहाँ से वो मिट्टी का पॉट उठाते थे, उसको धोते थे और उसको लेकर के रखते थे अपने पास, और सारा जीवन जो है ऐसे ही किया, भागते रहे अलग अलग जगह, अलग वन में जाते थे, थोड़े दिन वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से निकल करके फिर किसी और वन में चले जाते थे, फिर कहीं पर रहे, फिर थोड़े जब तक वृंदावन में रहे जो है वो हमेशा इस तरह का जीवन बिताया उन्होंने। तकरीबन 30 वर्ष उन्होंने वृंदावन में भजन किया, 30 ईयर्स। और उनके पास हमेशा 2 बुक्स होती थी, और उसी बुक्स को हमेशा पढ़ते थे, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, और ये दोनों बंगाली एडिशन था इसका, इन्हीं दोनों बुक्स को लेकर के हमेशा अपने पास रखते थे, और जहाँ भी बैठते थे इन्हीं को पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते थे, कभी आँखों से अश्रु धारा बह रही है, और फिर जब भी उस समय आता था फिर चले जाते थे, मान लीजिए थोड़ा मधुकरी किया तो कहीं पर्टिकुलर प्लेस बना नहीं रखा था पूरे वृंदावन में कि आप जाएंगे और वहीं पे रहेंगे, कभी 6 महीना, कभी 4 महीना, कहीं 2 महीना टिकते थे, फिर वहीं आसपास मधुकरी कई, वहीं इसी तरह का जीवन जिया, फिर निकल जाते थे। इस तरह से उन्होंने 30 साल तक ब्रज में रहे, और जब पता लगा उनको कि 1894 में जब योगपीठ को जब ढूंढा गया था भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा, और जगन्नाथ दास बाबा जी ने जब उसको कन्फर्म कर दिया था, इससे पहले जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी भी वहाँ पहुँच चले गए थे नवदीप, तो जगन्नाथ बाबा जी ने जब इसको कन्फर्म कर दिया योगपीठ को, और गौड़ किशोरदास बाबा जी को पता लगा कि जो योग पीठ है चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान प्राप्त हो गया है, तो वो बड़े परेशान हो गए कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को देखने के लिए। तो यहाँ से उन्होंने जो हैं किसी तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी से संपर्क स्थापित किया। उस समय तो न फोन था न कुछ था, मान लीजिए कोई मैसेज गया होगा या चिट्ठी गई होगी, कितना समय लगा होगा। तो उनसे वो आज्ञा प्राप्त हुई कि हाँ ठीक है, तुम नवद्वीप में आ सकते हो। तो फिर यहाँ से जो है उन्होंने नवद्वीप की तरफ चले गए। तो 1894 ईस्वी में जो है गौरकिशोरदास बाबा जी नवद्वीप चले गए वृंदावन से, और फिर सारा जीवन नवद्वीप के होके रहे, वापस नहीं आए कभी वृंदावन। फिर उन्होंने जो है हर जब यहाँ रहते थे, जैसे वृंदावन में जैसे रहते थे तो हर जगह घूमते थे और देखते थे, सेम उन्होंने वैसा ही जीवन उन्होंने वहाँ पर शुरू किया। जब वो ब्रज में नवद्वीप में धाम में गए, तो नवद्वीप धाम में जो है उन्होंने महाप्रभु की अलग अलग लीला स्थली और जो बड़े आचार्यों की के का जो जगह थी, वो हर जगह जो है वो वहाँ जाते थे और जगह पर रहते थे कुछ दिन, और सेम जो है जीवनचर्या उनकी वहाँ भी थी जो जीवनचर्या उनका वृंदावन में था। वहाँ भी कभी रुकते नहीं थे किसी भी जगह, कभी कुछ कुछ दिन रुकते थे, वहाँ के जगह देखते थे, फिर उसी तरह से जीते। वहाँ भी वैसे मधुकरी करते थे और जो प्राप्त हो गया उसी को प्राप्त करके खाते थे और वैसे ही रहते थे। इस तरह से जो है उन्होंने उसमें पूरा नवद्वीप में भी अपना जीवन जीना शुरू किया। और सन 1900 ईस्वी में 1900 में उन्होंने जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षित किया, है ना। 1900 ईस्वी में जबकि भक्ति विनोद ठाकुर के जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने आग्रह किया श्री श्री राधाराधिकारमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय जी की, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के आग्रह पर और भक्ति सिद्धांत महाराज के हठ पर, भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको बहुत हट किया कि मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है। तो और वो दीक्षा कहते थे मैं किसी को दीक्षा दूंगा मैं इस लायक नहीं कि मैं किसी को दीक्षा दे सकता हूं, क्योंकि बाह्य दृष्टिकोण से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो कहते थे कि तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो बड़े आदमी के बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकता हूं, ना आपको मैं दीक्षा नहीं दे सकता। तो दो बार तीन बार ऐसा हुआ कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज उनके पास आए और हर बार वो किसी न किसी बहाने के से उनको वापस कर देते थे कि अभी महाप्रभु का आदेश नहीं है, अभी कभी कहते थे मुझे राधा रानी ने कहा नहीं है, कभी कुछ बोल के वापस कर देते थे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि आज अगर नहीं देंगे दीक्षा तो मैं ही गंगा में कूद जाऊंगा। तो अब ये तो गौर किशोरदास बाबा जी के मन में हुआ करे जिस डिटर्मिनेशन से आए थे, तो इस बार भी वापस कर दिया। फिर थोड़ा सा आगे गए तो वापस बुलाया, आ जाओ जाओ स्नान करके आओ गंगा में। फिर गंगा में स्नान करके फिर उन्होंने उनको दीक्षित किया और ये सारी चीज़ें दी उनको जो मैं आपको बता रहा था पहले कि उनको तुलसी की चार माला दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने, ना चार सेट दिया। खैर हम कितने सेट प्राप्त करते हैं, एक, और उनको चार सेट प्राप्त हुआ। तो चार माला तुलसी की और कई जगह पांच भी लिखा हुआ है कि चार या पांच। तो तुलसी की चार माला, एक टोकरी, एक टोपी, और उन्होंने जो है वो उनको प्रदान किया और साथ में इंस्ट्रक्शन भी दिया कि कभी कलकत्ता मत जाना। कलकत्ता मत जाना का मतलब एक्चुअल मतलब क्या था, माया में मत गिरना। तो हालांकि वो लोग एक्चुअल में ये भी मुक्त जीव वो भी मुक्त जीव, और फिर भी एक इंस्ट्रक्शन जो गुरु की तरफ से आना चाहिए, तो उन्होंने दो इंस्ट्रक्शन दिए थे जिनमें प्रमुख रूप से ये बोला था। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज से किसी ने पूछा कि आप तो कलकत्ता चले गए तो इसका मतलब आपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। कह मैं कलकत्ता कभी नहीं गया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, मैं तो केवल जो है अपने मठ में गया, और जो मठ है वो बैकुंठा है, वो कलकत्ता नहीं है। इसीलिए मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं, मैंने अपने गुरु की आज्ञा का एज इट इज फॉलो किया। तो कलकत्ता में जरूर, शहर में जरूर था वो, पर वस्ता क्या है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि ये बैकुंठ है, तो मैं हमेशा बैकुंठ जाता हूँ, मैं कलकत्ता कभी नहीं जाता। तो एक बार उन्होंने जो है, तो गौर किशोरदास बाबा जी का जो है इसी तरह से जीवन चलता रहा, और वो थोड़े समय के लिए 6-6 महीने, 4-4 महीने, 8-8 महीने ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर रहते थे। ज़्यादा कलना में एक बाबा जी थे, उनके पास वो रहते थे, और फिर चैतन्य दास बाबा जी, और 2-3 जगह पर उनका प्रमुख रूप से, जगन्नाथपुरी भी जाते थे कभी, तो जगन्नाथपुरी और अंबिका कालना और एक और प्लेस है, वहाँ पर 3 जगह पर ये प्रमुख रूप से बारी बारी से जाते आते रहते थे, और तीनों जगह पर एक बहुत अच्छे संत थे, उनसे संपर्क में रहते थे। एक जगह पर स्वरूप दास बाबा जी थे, एक जगह पर चैतन्य दास बाबा जी थे, उनके संपर्क में। जब यहाँ रहते थे नवद्वीप में, तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी के संपर्क में रहते थे, और जब जगन्नाथ बाबा दास बाबा जी नहीं रहे, तो उसके बाद फिर इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो स्वानंद सुखद कुंज है, वहाँ पर जो है वो रोज जाया करते थे, क्योंकि उस समय जो है ये तकरीबन 1908 की बात है, इनकी आँखों की रोशनी चली गई, भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की 90% उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी 1908 में, और उनको बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें दिखाई देती थी। तो अब ऐसे उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले तो कुलिया ग्राम में रहे, और 6 महीने तक कुलिया धर्मशाला में, वो कुलिया धर्मशाला के टॉयलेट में भजन करते थे, क्योंकि अक्सर लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। बाबा जी धीरे धीरे जो है बाबा जी की प्रसिद्धि बहुत हो गई, तो अक्सर लोग बोलते थे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद मांगने आते थे, बाबा जी कृपा कर दीजिए, बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए। तो इस वजह से क्या करते थे, वो हमेशा अपने आप को टॉयलेट में बंद रखते थे, और वहीं पर वो 6 महीने तक उन्होंने भजन किया उस टॉयलेट से। कई बार जो है वो नगर पालिका के अधिकारी भी आए कि हम आपके लिए एक कुटिया बना देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी कुटिया की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि जो सांसारिक लोग हैं उसके अंदर जो उसकी जो बदबू है वो ज्यादा है कि ये टॉयलेट में रहने से, इसलिए वो सांसारिक लोगों से किसी भी तरह से मिलने से कतराते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलते, कई बार भक्त लोग आते भी थे, कई बार दूर से दर्शन भी करते थे उनके, तो गौर किशोरदास बाबा जी आराम से बात भी करते थे, बट जो इंटेंशनली जाता था कि बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, वरदान लेना है, तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहने का प्रयास करते थे। तो कोलाद्वीप में एक बार क्या हुआ कि इसी कोलाद्वीप में चैतन्य दास बाबा जी के संपर्क में थे यहाँ पर, तो एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत महाराज सरस्वती ठाकुर योग पीठ है वहाँ पर भजन करते थे रात्रि के समय में। तो रात्रि के समय में भजन कर रहे थे, तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो रात के 2 बजे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज योगपीठ पे पहुंच गए, और वहां जाकर के प्रणाम किया, जोर से बोलने लगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो भजन कर रहे थे वहीं आसपास में, उनको लगा तो बाबा जी की आवाज है, गुरुदेव की आवाज है, तो बाहर आके आए तो देखा कि रात्रि के 2 बजे हैं और गौर किशोरदास बाबा जी यहां पर हैं। तो उनको पकड़ा, फिर आप कब आए, कैसे आए, कौन लेके आया आपको 2 बजे रात को? तो गौर किशोरदास बाबा जी कुछ बोले नहीं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि गुरुदेव बताइए कौन लेके आया आपको, इतनी रात को आप आए कैसे? कह रहे हैं कोई, गौर किशोरदास बाबा कह रहे हैं कोई दे गया यहां तक, कह रहे रात्रि में कौन दे गया आपको, और जो दे गया वो कहां है? कह रहा पता नहीं, चला गया होगा। कह रहा रात्रि में आपको गंगा कैसे पार हुए आप, क्योंकि कोलाद्वीप से आप यहां पर जब आएंगे तो उसमें गंगा पार करना पड़ता है ना, तो कहा आपने गंगा कैसे पार किया? कहा उसी ने करवा दिया। तो गौर के भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा किसने पार करवा दिया, कौन है वो व्यक्ति, क्या कृष्ण थे? जब ये बोला ना कि क्या कृष्ण थे, कृष्ण ने आप लेके लेके आए आपको, तो फिर गौर के आवाज बिल्कुल चुप हो गया और मुस्कुराने लगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज समझ गए कि ये कोई व्यक्ति रात्रि के 2 बजे इनको कुलिया धर्मशाला से ले करके और यहाँ यहाँ तक पहुंचा देगा, रहा बीच में गंगा पार करा करके यहाँ तक पहुंचाएगा, तो ये कोई और नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है वो उसके बाद जो है उनका जब आंखों की रोशनी चली गई थी, बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे थे, तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आप जो है एक जगह स्टेशन हो मतलब एक जगह रुक करके ना आप भजन करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, कोई आप किसी की सहायता भी नहीं लेते हो, किसी का कुछ सर्विस भी नहीं लेना चाहते, तो फिर क्या है कि आप एक जगह रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़े समय तक तो तब तक भक्ति सिद्धांत महाराज ने चैतन्य मठ का काम भी शुरू कर दिया था। आप सबने देखा ना मायापुर में चैतन्य मठ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज के कहने पर वो थोड़े दिन चैतन्य मठ में रहे। और उस समय ऐसा स्वरूप नहीं था, बट जो भी होगा होगा उस समय। और उसके बाद जो है उन्होंने प्रद्युम्न, एक कुंज है जो कि स्वानंद सुखंद कुंज के पास ही है, तो प्रद्युम्न कुंज में उन्होंने रहना स्वीकार किया और वहाँ पर ही रहते थे। और वहीं से रोज स्वानंद सुखंद कुंज भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर जी के उसमें आते थे, जब तक भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना शरीर नहीं छोड़ा था, तो तब तक वो रोज आते थे और वहाँ पर भजन करते थे। और कभी जो है वो वहीं रह जाते थे कई दिनों तक, उसी स्वानंद सुखंद कुंज में कई बार रह जाते थे और कभी प्रद्युम्न कुंज में रहते थे। स्थिति ऐसी हो गई थी कि कई बार ध्यान नहीं रहता था कि मैं कपड़े भी पहन लूं, कई बार कपड़े भी नहीं पहनते थे, एकदम अवधूत, उनको पता भी नहीं चलता था कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक बार जो है जो कलकत्ता चले जाइए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने खास करके बोला कि मेरे साथ आप कलकत्ता चलिए, मैं वहाँ आपको ठीक मतलब डॉक्टर मेडिकल से चेकअप करवा करके आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, आपकी आंखें की पूरी रोशनी गई नहीं है। लेकिन भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी बिल्कुल नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कलकत्ता तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। उनके मतलब मन में वो था कलकत्ता नहीं जाऊँगा। तो फिर उन्होंने उनके लिए कहा कि आप फिर यहाँ पर रहिए। तो प्रद्युम्न जो है वो प्रद्युम्न मठ में रहते थे और वहीं से इनका रोज का आना जाना था, और वहीं से जो है स्वानंद सुखंद कुंज में रहते थे, आते जाते रहते थे। इस तरह से जो है वो अपना टाइम जो है वो भगवान के भजन में और कीर्तन में निकालते थे। उनके कुछ पास टाइम्स भी हैं जो कि उन्होंने कई भक्तों को, जैसे एक मैरिड कपल थे, वो अपनी पत्नी के साथ आए एक बार इनके पास और वहाँ पर भजन भी करते थे थोड़े दूर पर रह करके, और बहुत अच्छे बहुत सिंसियर भक्त थे। तो भक्ति सिद्धांत सॉरी गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको कहा कि देखो जो वैष्णव पत्नी होती हैं वो बहुत दुर्लभ से मिलता है किसी को, आसान नहीं है दुर्लभ पत्नी को प्राप्त करना इस भौतिक जगत में। ये पूरे करें एंटायर वर्ल्ड, इस पूरे संसार में वैष्णव पत्नी को प्राप्त करना असंभव है और बहुत मुश्किल है, उस समय कह रहे हैं, आज से आप समझ लीजिए तक 150 साल पहले कह रहे कि वैष्णव पत्नी को प्राप्त करना आसान नहीं है इस संसार में। तुम्हें वैष्णव पत्नी अगर प्राप्त हुई है तो ये भगवान कृष्ण की कृपा समझो, और इसको कभी अपने पत्नी की तरह मत समझो, इसको क्या समझना है, ये कृष्ण की दासी है और मैं कृष्ण का दास हूं। इसी भाव में रह करके दोनों साथ भजन करो, उसको अपने से संबंधित मत देखो, उसको किससे संबंधित देखो, कृष्ण से संबंधित। जो तुम्हारे कृष्ण के लिए जो कार्य हैं उसको करने में तुम्हें सहयोग देगी, ऐसे जो है वो उसको ऐसे समझना चाहिए। और गौर किशोरदास बाबा जी एक बार एक डिवोटी थे जो कि फेस्टिवल में प्रसाद फेस्टिवल का प्रसाद होता है ना फेस्टिवल में, तो फेस्टिवल का प्रसाद जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया। वो गौरकिशोरदास बाबा जी के पास ही रह करके भजन करता था, जहाँ गौरकिशोरदास बाबा जी रहते थे वहीं से, वहीं पर वो भी रहता था और वहीं पर भजन करता था। तो एक दिन वो भोजन प्राप्त करने के लिए फेस्टिवल में जो है वो गया और फेस्टिवल का फीस्ट पा लिया। गौरकिशोरदास बाबा जी को पता लग गया कि ये फीस्ट पा के आया है। तीन दिन तक उससे बात नहीं करी उन्होंने, गौरकिशोरदास बाबा जी तीन दिन तक कोई बात नहीं करी उनसे। और जब चौथे दिन बात करी तो क्या बोला, बिना सोचे समझे तूने जाकर के किसी के यहां खा लिया, बिना ये समझे हुए कि इस भोजन का ओरिजिन कहां है, ये भोजन कहां से आया है, तुम्हें पता नहीं वो जो भोजन पका था आज उसका उसको किसने दिया था, एक लो कास्ट व्यक्ति ने, बहुत लोअर व्यक्ति ने और एक बहुत सुंदर स्त्री ने मिलके जो है वो किया था। तो तेरा, तूने ऐसा भोजन किया इसलिए तेरा भजन अब यूजलेस है, बेकार है, तेरा भजन बेकार हो गया। आप सोचे क्या, हम तो इस वक्त कपार थर तरफ कभी कंसीडर भी नहीं करते। तो कह रहा है कि तूने भोजन कर लिया इसीलिए, कह रहा कि तू इसके होगा क्या, बिकॉज यू टुक द फूड विदाउट कंसिडरिंग इट्स ओरिजन योर भजन इज यूजलेस, कह रहे हैं कि तुम्हारा भजन यूजलेस है। कि कह रहे हैं कि किस कभी भी ये खाने से पहले सोचना चाहिए कि पहले आया कहाँ, ओरिजिन पता करना है, ठीक से देखना कि वस्तु कहां से आया है, किस तरह के चीजों ने वो किया है। स्वयं गौरकिशोरदास बाबा जी जो हैं वो आप देखो कि 128 राउंड रोज करते थे, 128 माला का जप करते थे रोज, 16 से गुना करिए, हम कितने करते हैं 16 में भी जान निकल रही होती है। 128 माला का रोज जप करते थे और मान लो एक दिन अगर प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ तो सारा दिन ध्यान कहां पर रहता है, प्रसाद के ऊपर, भजन कैसे होगा भाई, प्रसाद तो मिला नहीं आज ना। और वो मिट्टी खा के रहते थे, कभी पानी पी के रहते थे, कभी गंगा जी का पानी पी लेते थे और 128 माला का जप करते थे। तो उन्होंने जो है इस तरह से उन्होंने एक बात भी उसको उनको बोली कि जो भी व्यक्ति अच्छा खाने का आदि बन चुका है, अच्छा भोजन करने का क्या आदत पड़ गई है जिसको, और जिस भक्त को भी कहा, जिस भजन करने वाले को और जिसको भी अच्छा भोजन करने की आदत पड़ गई है कि मैं अच्छा भोजन मिलना चाहिए, कह रहा है उसका बहुत जल्दी उसका भजन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अब जो 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 आदेश चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था, ये एक तरह से आप समझ लीजिए सेम चीज बता रहे हैं, भला ना खाई वो भला ना पहिर वो, अच्छा नहीं खाना है अच्छा नहीं पहनना। अच्छा नहीं खाना का मतलब ये नहीं कि भगवान को या किसी आचार्य को या किसी गुरु को आपसे चिढ़ हो रही है कि तू भला मत खाना, मित्र तू अच्छा मत खा रहा है इसलिए मैं चिढ़ हो रही है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, हमें जब भी साधारण भोजन प्राप्त होगा हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगेगा आज तो पेट ही नहीं भरा यार, आज तो भोजन अच्छा प्राप्त हुआ नहीं। तो कह रहे हैं धीरे धीरे फिर ये क्या होगा कि जिह्वा जो है हमें धीरे धीरे नीचे लेके चली जाएगी। इसीलिए जो भी प्राप्त हो भगवान की कृपा से उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, कि वो भी उसको भगवान की कृपा समझ के उसी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कभी भी भोजन अच्छे भोजन के उसमें जो है चक्कर में नहीं रहना चाहिए। कई बार लोग भोजन मतलब प्रसाद के नाम पर जो है कितने दूर दूर चले जाते हैं, प्रसाद मिलेगा बढ़िया वाला, और इसीलिए लोगों की कमजोरी देख के आप देते, सबसे पहले यही अनाउंस होता है फॉलोड बाय प्रसादम, प्रोग्राम है वहां पर और साथ में क्या है प्रसाद है, फीस्ट प्रसादम। तो क्योंकि कलयुग में ये लोगों की कमजोरी है, इवन प्रभुपाद कहा करते थे कि आप लोगों को भोजन करा के जीत सकते हो, तो बड़ा खतरा। और जबकि महाप्रभु क्या कह रहे हैं और बाकी आचार्य क्या कह रहे हैं कि भोजन हमेशा जो है भोजन से सावधान रहना चाहिए, बल्कि कार्तिक में कहा गया है कि कभी दूसरे का अन्न खाना नहीं चाहिए कार्तिक महीने में, भजन करने वाले व्यक्ति को। भजन करने वाले व्यक्ति को कार्तिक महीने में विशेषकर बताया गया है कि दूसरे का भोजन, दूसरे के का अन्न नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपना वो करते रहे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक शिप में जो है वो जा रहे थे, मतलब शिप जहाज में, और काफी सारे भक्त भी बैठे थे वहां पर। तो उन्होंने ये प्रयास बताने का प्रयास किया भक्ति सिद्धांत महाराज को कि आप ज्यादा बड़े भक्त हैं गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज से, आप तो इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने बड़े भक्ति हैं, और आप इतना प्रचार करते हैं, इतना लोगों को करते हैं, इतने आपके कहने से इतने लोग भक्त बन रहे हैं, और जो है गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज तो एक जगह बैठ के भजन करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को ये बात इतनी वो हो गई, उन्होंने कहा, थोड़े उत्तेजित हुए, कहा ये जो उसी का एग्जाम्पल दिया जिस पर बैठे हुए, कह रहा है ये जो शिप चल रहा है ना, इसमें जो ये चलाने वाला है, ये व्यक्ति है, तुम बैठे हैं और ये बटा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल है, इंटरनल इसका मोटर है, वो इंजन है जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो मेरे गुरु जो हैं वो मोटर हैं जो वहां बैठ के भजन करते हैं, उन्हीं से मैं ये शक्ति प्राप्त करता हूं और ये सब करता होता हूं। मतलब अपने गुरु महाराज के प्रति उन्होंने थोड़ा सा देखा कि कोई व्यक्ति इसके ये सिद्धांत साबित करने का प्रयास कर रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा हूं, मेरे गुरु जो हैं इतने वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति हैं कि जो सारा चीज वहीं से होता है, ये तो सब एक्सटर्नल है। कह रहा है मेरे गुरु महाराज भजन करके मेरे को शक्ति प्रदान करते हैं और उसी से मैं सब कुछ करता हूं। कई बार गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज जब लेक्चर देते थे चुपचाप सुनते थे, चुपचाप छुप के जाके पीछे बैठ जाते थे और सुनते थे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने पॉइंट आउट भी कर दिया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वो जो पीछे बैठे हैं ना चादर ओढ़ के, उन्हीं की कृपा से कर रहा हूं सब कुछ। इस तरह से जो है वो, और एक बार उन्होंने अपने उसमें जो एक भक्तों को बताया था कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो आप मुझे नवदीप में घसीटते हुए मुझे लेके जाना। तो कई बाबा जी लोग तैयार हो गए कि उनकी अंतिम इच्छा थी भाई नवदीप में घसीटते हुए उनको लेके जाना है। शायद वे चाहते थे कि नवदीप का रज जो है वो मेरे उसमें लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा चैलेंज कर दिया उन बाबा जी लोगों को, कहा कि मेरे गुरु के शरीर को कोई वही व्यक्ति छू सकता है जिसने पिछले 6 महीने में किसी स्त्री को ना छुआ हो, पहले 3 महीने में, 2 महीने में, पिछले 1 महीने में, पिछले 24 घंटे में अगर किसी ने स्त्री को नहीं छुआ है तो वो व्यक्ति मेरे बाबा जी को शरीर को छू सकता है। एक भी बाबा जी वापस आए नहीं सामने। बाद में एक पुलिस वाले ने पूछा है कि आपने ऐसे बोल दिया, अगर कोई बोल देता तो उन्होंने कहा कि बोल ही नहीं सकता था मैं, तो उसकी बात को एविडेंस भी मान लेता लेकिन वो बोल नहीं पाता हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा वो बोल नहीं पाता, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आएगी बोलने की। कितने शक्तिशाली लोग थे आप सोचिए, क्या कि कोई उसको बोल नहीं सकता था, मान लो कोई झूठ भी बोल देता, कहा नहीं बोल सकता था, इतना कॉन्फिडेंस थे। और 17 नवंबर 1938 को गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अपीयर्ड हुए थे, और 17 नवंबर 1915 को ही जो है अंग्रेजी के डेट के हिसाब से दोनों सेम डेट है, उन्होंने जो है वो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया, गंधर्विका गर्धारी के नित्य लीला में प्रवेश किया। और ऐसा बताया जाता है कि वो गुणमंजरी हैं राधा कृष्ण के नित्य लीला में, और हालांकि श्रीनिवास आचार्य को भी गुणमंजरी कहा गया है एक जगह कि वो भी गुणमंजरी हैं, पता नहीं लेकिन बुक में यही लिखा हुआ है कि नित्य लीला में जो है वो गुणमंजरी हैं। श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की, श्री गौरकिशोरदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अभी 5-7 मिनट है तो मैं थोड़ा सा एक प्रबोधिनी एकादशी, आज बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है और पूरे साल में सबसे ज़्यादा पूरे साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, आज सबसे ज़्यादा पावरफुल एकादशी होती है ना, कार्तिक महीना इतना पावरफुल है और कार्तिक महीने में जो है वो सबसे पावरफुल एकादशी प्रबोधिनी। तो आज देवोत्थान एकादशी भी इसको बोला जाता है क्योंकि ऐसा बोलता है कि भगवान योग निद्रा से आज जागते हैं आज के दिन, तो उसमें कह रहे हैं कि इस एकादशी को, पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि इस एकादशी को अगर कोई उपवास कर ले तो उस एक इस एकमात्र उपवास से उसको 100,000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के का फल प्राप्त होता है। 1,000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के का फल प्राप्त होता है केवल आज की एकादशी का व्रत करने से। ये प्रबोधिनी एकादशी के महात्म्य में लिखा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण इस को कहते हैं कि यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और तुम्हें वो बातें बताता हूं। तो ये जो संवाद है नारद और ब्रह्मा जी के बीच में है, तो उसी को फिर कह रहे हैं। ये दूसरा, पहला वाला। दूसरा कह रहे हैं कि मेरु पर्वत के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, मेरु पर्वत के समान, उन सबको यह पाप नाशनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह एक पाप नाशनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। और फिर कह रहे हैं कि आज के दिन, मतलब आज के एकादशी के में के रात्रि में अगर कोई जागरण करता है तो पहले के हजारों जन्म जो पाप किए हैं उन्होंने उनसे केवल आज की रात्रि में जागरण करने से वो सब रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। जैसे रुई का ढेर भस्म हो जाता है अग्नि में, उसी तरह से वो जो है पिछले 1,000 जन्मों के पाप केवल रात्रि जागरण से जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसा जो है पद्म पुराण के इस महात्म्य लिखा हुआ है। और कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, भगवान की जो पूजा करना, तो वो 100 जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। पिछले 100 जन्मों के प्राप्त से जो है वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है केवल उपवास करके भगवान की पूजा करता है। जो रात्रि जागरण करता है उसका अलग फल है, उपवास करने का अलग फल है ना। कितने आप अच्छी तरीके से इसको कर पाते हो, भगवान के साथ में पूजा करने से अलग फल प्राप्त होता है। तो इस बहुत लंबा चौड़ा है ये चैप्टर जिसमें ये लिखा हुआ है पद्म पुराण के उत्तर खंड में, कि जहाँ से ये वैष्णवों के सारे रूल रेगुलेशन वहीं से आते हैं, पद्म पुराण से ही। तो उसमें ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है। और कहना कि प्रबोधिनी एकादशी में पूजित मन, प्रबोधिनी एकादशी को अगर कोई भगवान विष्णु की और कृष्ण की पूजा करता है तो भगवान गोविंद जो है उसके बचपन जवानी और बुढ़ापे में किए गए 100 जन्मों के पाप को, चाहे वो अधिक हो या कम हो, नष्ट कर डालते हैं। तो आज इसमें जो है वो, और फिर कह रहे हैं कि जो इस एकादशी के दिन, आज के एकादशी के दिन भगवान की कथा सुनता है, आज के दिन जो भगवान की कथा सुनता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है एक जो व्यक्ति आज के दिन भगवान के बारे में भगवान की कथा को सुनेगा। तो इस तरह से जो है वो उनके बारे में बहुत बहुत महत्व है आज की एकादशी का। तो हर व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से इसका पालन करना चाहिए, है ना। और आज से शुरू हो रहा है भीष्म पंचक, जिसके बारे में भी, भीष्म पंचक वस्तुतः भीष्म देव ने ये व्रत भगवान कृष्ण से प्राप्त किया था। और चूंकि हर महीने पंचक आती है, अगर आपको, मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर हर महीने पंचक आती है 5 दिन की। तो इस कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने जो है वो, सॉरी भगवान, हाँ भगवान कृष्ण से भीष्म जी ने ये व्रत को प्राप्त किया था करने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसी चीज बताइए जिससे मेरा जो है वो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने उनको ये व्रत बताया था जो कि आज से शुरू होकर के 5 दिन तक होता है। प्रमुख रूप से इसके बारे में हरिभक्ति विलास के 16वें विलास में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा है, पर उसमें ज्यादा चर्चा नहीं है। उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करना चाहता है, जो सामर्थ्यवान है, उसको जरूर जो है वो भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर अधिक जानकारी के लिए आप पद्म पुराण देखिए। तो पद्म पुराण में मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो व्रत करने का जो विधान है एक्चुअल में, वो इस तरह से नहीं है जैसे आजकल ज्यादा प्रचलित हो गया है। उसमें लिखा गया है कि ये जो भीष्म पंचक का व्रत है वो एकादशी से, पहली बात तो एकादशी से शुरू हो करके और जो है ये पूर्णिमा तक जाएगी, और बीच में व्रत ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ब्रेक कर देते हैं द्वादशी का, द्वादशी में ब्रेक कर देते हैं, पर ये व्रत का अगर कोई व्रत लेता है कि मैं पंचक का व्रत करूंगा पूरा, तो उसको ब्रेक केवल उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पूर्णिमा है। ये व्रत बीच में ब्रेक नहीं होता। हो सकता है इसका कोई और वर्जन, मैं आपको पद्म पुराण के हिसाब से बता रहा हूं ये चीज जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये पहली बात। दूसरी बात उसमें लिखा हुआ है कि इसके व्रत करने का विधान क्या है कि पहले दिन व्यक्ति को व्रत करने के बाद एक स्थिर जगह पर बैठ करके उसको गाय का गोबर ग्रहण करना चाहिए पहले दिन, अर्थात आज के दिन थोड़ा सा गाय का गोबर वो ले सकता है, और नीचे सोना होता है, मतलब जमीन के ऊपर सोना होता है, बेड के ऊपर सोना नहीं होता जो ये व्रत लेगा उसके लिए। तो ये दूसरा। तीसरी बात कि दूसरे दिन अर्थात कल द्वादशी को वो व्यक्ति जो है वो एक आसन बिछा करके गौमूत्र का पान करे, जितना पी सकता है गाय के गौमूत्र का पान करे। तीसरे दिन थर्ड डे उसको दही लेना चाहिए, थर्ड डे उसको दूध लेना चाहिए, फोर्थ डे दही लेना है, और फिफ्थ डे में पंचगव्य लेना है, पांचों चीजों मिला करके लेना है, और इसके बाद वैष्णव को आप खिलाइए, उनको पूरा सम्मान का सम्मान सहित, और इसके बाद संध्या के समय जब संध्या बीत जाएगी उसके बाद जो है पंचगव्य लेने के बाद भोजन करना होता है उस व्यक्ति को जो ये भीष्म पंचक का व्रत रखता है। नहीं तो आप सामान्य रूप से एकादशी का व्रत रखिए और द्वादशी को जैसे हम ब्रेक करते हैं वैसे करिए, और एक सामान्य तरह से भी हम कर सकते हैं उसमें कुछ। आप वैसे तो ये कार्तिक महीना है, आप जो भी व्रत करेंगे बड़ी अच्छी बात है सब हर तरह से, लेकिन भीष्म पंचक के व्रत का ऐसा ही विधान जो है वो पुराणों में लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई और विधान नहीं है कि जैसे हम पानी नहीं पियेंगे, केवल जल पी के रहेंगे, केवल फल खा के रहेंगे, वो आपकी इच्छा है, वो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं। कार्तिक महीना है बड़ी अच्छी बात है, पर जो विधान है भीष्म पंचक करने का वो यही है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की। यस प्रभु जी, व्रत किस प्रकार से पारण करना चाहिए वो मैंने पढ़ा नहीं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, पढ़ के मैंने पढ़ी नहीं है, लिखा हुआ है पारण विधि, पारायण विधि भी लिखा हुआ है पारण कैसे करना चाहिए। कल अच्छा, पालन कैसे करना चाहिए। आज उसमें बताया गया कि भगवान आज प्रतिदिन जो है, आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा या भगवान कृष्ण की या राम की, जो भी आप भगवान की पूजा करिए, सबसे पहले तो ये है भगवान की पूजा करनी चाहिए और जितना हो सके, और दीपक जलाने चाहिए 24 घंटे, भगवान को माला पहनाना, भगवान को चंदन लगाना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान को भोग लगाना, इस तरह की चीज़ें करने के बाद जो है वो अपना आध्यात्मिक कर्म अर्थात आप जप करते रहिए। आज के दिन सोना नहीं है, दिन में भी नहीं, रात्रि में भी नहीं। कई बार लोग समझते हैं रात्रि जागरण करना है तो दिन में सो लेते हैं, ये नहीं है तो परंपरा। 24 के 24 घंटे अवेक रहना है, मतलब जब से सुबह इसका नहीं कि दिन में सो लेंगे 4 घंटे रात्रि में जाग लेंगे, ऐसा नहीं है। 24 के 24 घंटे आपको जागरण करते करके रहना है, और फिर जो है इसी तरह से रात्रि में खूब भजन कीर्तन, भगवान के सामने नृत्य गायन कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह से रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह भगवान की फिर दोबारा से स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा करके फिर ब्राह्मण को वैष्णवों को बुलाइए, खिलाइए, है ना, उनको भोजन करवाइए, उनको कुछ दक्ष दीजिए, और उसके बाद फिर जो है आप कुछ पंचगव्य को लेकर के वो भी रात्रि के समय में, वो करने के बाद आप उनसे क्षमा मांगिए कि जो त्रुटि हुई है, जो गलती हुई है उसके लिए, और संध्या होने के बाद जो है सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद जो है आप फिर इसके लिए फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं पंचगव्य लेने के बाद। प्रमुख रूप से मोटा मोटा यही है, और बारीक तो पढ़ के बता सकता हूँ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये देव उठनी एकादशी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जैसे सभी को पता है, तो इसमें मैं ये जानना चाहता था कि तो चार महीने जैसे बताया गया है कि देव अब सो उठते हैं मतलब जो है, तो मैं ये जानना चाहता था प्रभु जी कि जो जब देव सो जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्य कौन करता है, ये सब सबके ड्यूटियां बांटी हुई हैं से भगवान ने, तो उनके कार्य कौन करता है, क्या भगवान स्वयं करते हैं? वो तो सोते ही नहीं है शायद, सर्वाद पूरे सुप्रीम पावर है वो हमारे, तो जो जब देव ही सो गए जो इतने ड्यूटी करने वाले हैं तो कौन करता है उनके कार्य?
आप ये प्रश्न आज से 12-13 साल पहले मेरे मन में भी आया था जो आपका है, कि मैंने कहा कि सब सो जाते हैं तो काम कौन करता है, आप बैठ जाइए कोई बात। तो एक्चुअल में क्या है कि देवता हमारी तरह नहीं सोते हैं और ना भगवान हमारी तरह सोते हैं कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हम बेसुध होकर के हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है पीछे से, है ना। तो भगवान जब योग निद्रा में होते हैं या कोई देवता लोग ऐसे करते हैं तो उनके जो है वो उनकी शक्तियां साथ में काम कर रही होती हैं। ऐसा नहीं, जैसे भगवान जब एक बार एकादशी की गुफा में जब सो गए थे और मधु कैटव उनका पीछा कर रहा था भगवान का, तो भगवान योग निद्रा में सो गए थे तो अब वो राक्षस जो है उसी उस गुफा तक पहुंच गया जहां तक भगवान सोए हुए थे और उसने भगवान को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान की जो शक्तियां वो हर समय काम कर रही होती हैं, तो वो शक्ति उसमें से उत्पन्न हो गई और उसने मधु कैटव का वध कर दिया और वही बाद में एकादशी बनी जिसको हम एकादशी के व्रत से नाम जानते हैं। वही वो चूंकि वो 11वां दिन था तो भगवान उन्होंने जब वध कर दिया तो भगवान ने कहा तुमने तो बड़े अच्छे काम किए, मैं सोया हुआ था तुमने राक्षस का वध कर दिया, तो कह रहा प्रभु जी मैं आपकी भगवान मैं तो आपकी ही हूं, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। फिर भगवान ने अलग दिया कि मैं अपने भक्तों के हृदय में तुम्हारा स्थान दूंगा। तो इसी तरह से देवता की जो शक्तियां हैं ऐसे हमारी तरह के देवता हमारी तरह की नींद नहीं लेते हैं, उनकी जो शक्तियां हैं साथ में काम कर रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं लगेगा या उनको पता नहीं चलता कि पीछे से क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, उनकी चीज़ें काम हो रहा होता है एक्चुअली में ना। जैसे आप मान लीजिए एक भौतिक जगत में भी आप देखोगे कि आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो भी सोता है, ऐसा थोड़ी कि देश बंद हो जाता है उसके सोने के बाद, काम चल रहा होता है क्योंकि शक्तियां काम कर रही होती हैं, सरकार तो फिर भी फंक्शन कर रहा होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी विदेश में होते हैं, PMO काम कर रहा होता है, अभी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है इंडिया में, आप देखिए मोदी जी को पता नहीं लेकिन उनका 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 जो ऑफिस है वो काम कर रहा है। तो भगवान की जो एक सामान्य व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है कि उसकी शक्तियां काम कर रही होती हैं, तो देव में और भगवान में नहीं होगी, निश्चित रूप से होती हैं। तो भगवान जो हैं या देवता जो हैं जब सोते हैं तो उनकी शक्तियां काम कर रही होती हैं फिर भी, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। ये चतुर्मास में जो शयन एकादशी आता है उसमें हम भगवान को सुला देते हैं, फिर करपट बदलने का भी एकादशी आता है,
पार्श्व एकादशी,
हाँ पार्श्व एकादशी, फिर उत्थान एकादशी, अब भगवान को सुला देते हैं फिर पीछे से हम उनका जन्माष्टमी मनाते
ये इस पर तो प्रकाश आप ही डालोगे,
ये कैसा नियम, एक कैसा नियम बनाए हुए
इस पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि पुजारी तो आप है। हरे कृष्ण।
His grace.